الحمد لله وكفى وسلام عليه الذي اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقلبي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते हैं हमारे कुरान की जिल्द नंबर 5 से, और आयात जो है वो 93 से 100 तक चल रहे हैं, 93 से 100। इन आयात के मार्फ मसाइल हम पढ़ रहे थे और उनमें हम थे सफा नंबर 146, 45, 46, हाँ 146 के ऊपर थे। और अहकाम व मसाइल जो इन आयात से हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अखज फरमाए, यानी जो ड्राइव किए इनके अंदर से अहकाम और मसाइल। तो अहकाम से मुराद भाई शरीयत के हैं अहकाम, हुक्म, और मसाइल यानी जिसमें शरीयत के मसाइल हों या कोई और ऐसा तादीबी या अदब से मुतल जो कोई मसला हो तो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स जिनको कहते हैं ना, जो आप डिराइव करते हो। तो तीसरा पॉइंट आज हमने पढ़ना है कि हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि जब बशारत देने वाला कमीस यूसुफ लेकर पहुंचा, क्योंकि वही वाक्य चल रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इधबू बे कमीस ही अपने कमीज के साथ जो है वो भाइयों को रवाना किया था और कहा था कि अपने वालिद के पास के ऊपर डाल देना तो उनकी बसीरत वापस आ जाएगी, बसारत वापस आ जाएगी। बसीरत तो उनकी कहीं नहीं गई थी क्योंकि अल्लाह के नबी थे, लेकिन बसारत चली गई थी, बसारत वापस आ जाएगी। तो जब वो लेके पहुंचा तो याकूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उसको कुछ इनाम दें, मगर हालात साजगार ना थे, इसलिए उजर किया कि 7 रोज से हमारे घर में रोटी नहीं पकी, इसलिए मैं कुछ मादी इनाम तो दे नहीं सकता, मगर ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम पर सकरात मौत को आसान कर दें। कुतुबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये दुआ उनके लिए सबसे बेहतर इनाम था। तो रोटी का होना जो है ये यानी आखिरी दर्जा होता है गुरबत का, कि रोटी तक नहीं है। तो अगर रोटी तक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बाकी चीजें तो पहले खत्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि उन चीजों को बेच बेच करके फिर इंसान कम से कम खाने पीने का बंदोबस्त करता रहता है, लेकिन अगर खाने पीने तक का बंदोबस्त नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये कि और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जो सकरातुल मौत से आसानी की दुआ दे दी तो ये उनके लिए बड़ा बहुत सबसे बेहतर इनाम था, क्योंकि वो जो सकरात होती है गमरात और सकरात मौत के वक्त जो तकलीफ होती है तो वो इंतहाई शदीद तकलीफ होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ने गालिबन पूछा एक दूसरे जलीलुल कदर सहाबी से कि सकरात मौत को आप बयान फरमाएं, तो उन्होंने इसको ऐसा नक्शा खींचा उसका कि जैसे कि एक झाड़ीदार यानी एक कांटेदार झाड़ी के ऊपर आप कोई कपड़ा फेंक दें तो वो कपड़ा जो है वो कांटों के अंदर उलझ जाता है, फिर उसके बाद उस कपड़े को आप खींच करके अगर उससे अलग करने की कोशिश करें तो फिर वो कपड़ा कैसा तार तार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो है वो जब रूह को जिस्म के अंदर से मलिकुल मौत खींच करके निकालते हैं तो वैसे ही तकलीफ होती है। ठीक है, बहरहाल जो नेक ईमान वाले होते हैं जिन्होंने गुनाहों से इज्तनाब करके ज़िंदगी गुजारी होती है तो उनके ऊपर अल्लाह ताला इसको आसान फरमा देते हैं, या जिन्होंने अल्लाह वालों की दुआएं दी होती हैं तो उनके ऊपर भी आसान फरमा देते हैं। बाकायदा दुआ मनकूल है, गालिबन हदीसी की दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ग़मरातिल मौत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ गमरातुल मौत से, सकरातुल मौत से। इस वाक्य अच्छा चौथा पॉइंट है कि इस वाक्य से ये भी मालूम हुआ कि खुशखबरी देने वाले को इनाम देना सुन्नत अंबिया है। صحابہ کرام میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر جب ان پر عذاب ہوا اور بعد میں توبہ قبول کی گئی تو جو شخص قبول توبہ کی بشارت لایا تھا اپنا جوڑا کپڑوں کا اتار کر اس کو پہنا دیا۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کے لیے دوستوں وغیرہ کو کھانے کی دعوت دینا بھی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ پڑھ کر ختم کی تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔ تو خوشی کے موقع کے اوپر کسی کو خوشی کی خبر سن کر کے تحفہ دے دینا، یہ انبیاء کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں ہمیں صحابہ کرام کی سنتوں کی شکل میں پہنچی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی پھر نبی علیہ السلام کی ہی سنت میں ہی ان کو شمار کیا جاتا ہے، جو صحابہ کرام کی سنت ہوتی ہیں۔ یعنی ہوتی تو وہ الگ ہے صحابہ کرام کی سنت ہی، لیکن شمار ان کا ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، تو ہمارے لیے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ خوشی کے موقع کے اوپر کھانا کھلانا، یہ بھی سنت صحابہ بلکہ خلفائے راشدین میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل کیا تھا۔ تو جیسے لوگ ساتھی جو ہیں وہ یعنی بچے کا قرآن مجید حفظ ہوتا ہے یا کوئی اور خوشی کی خبر ہوتی ہے، بچے کا جو ہے وہ رشتہ طے ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی میں کھانا کھلا دیا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، ایز لانگ ایز اس کے اندر جو ہے وہ اسراف نہ ہو، یعنی فضول خرچی نہ ہو۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، لوگوں نے کھانا کھلانا بھی ایک اچھی اچھی بات ہے، لیکن ایسا اس میں یعنی کیا کہتے ہیں اسراف یعنی فضول خرچی، اور اس کو کیا کہتے ہیں کیا انگریزی کا کیا لفظ ہے، ای سے جو آتا ہے، بہرحال تو اچھا یہ ایک بڑی عجیب بات، عجیب تو خیر کیا غریب بات ضرور ہے کہ صحابہ کرام کی باتیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اب جو ہے نا وہ پائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اس ایسی چیز کو غریب کہا جاتا ہے جو کہ انوکھی ہو جائے، اچھوتی ہو جائے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھ کر ختم کری تو ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب، سورہ بقرہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ جو تیز پڑھنے والے ہیں تو وہ تو ایک دن روزانہ جو ہے وہ سورہ بقرہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، یا 2 4 دن کے اندر سورہ بقرہ پڑھ کے مکمل کر لیں۔ تو اب جو ہے وہ کیا اونٹ پہ اونٹ کھلاتے رہے لوگوں کو؟ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے نا، یہ ہماری طرح سے نہیں پڑھ رہے تھے، یہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ سمجھ سمجھ کر کے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اور بھی واقعات دوسرے صحابہ سے بھی منقول ہیں کہ جس کے اندر کہ لمبا لمبا وقت گزارا انہوں نے کسی ایک سورت کو ختم کرنے کے اوپر۔ الحمدللہ ہم جو ہے وہ تلاوت میں تو ایسا کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو ہے وہ اتنا تدبر کے ساتھ تلاوت کری کسی سورت کی، لیکن جو درس قرآن والی کلاس ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا بھی کچھ ایسی معاملہ ہے، الحمدللہ خدا تعالیٰ قبول فرما لے، ورنہ تو عمل تو بہت سارے کر لیتے ہیں لیکن اصل چیز تو قبولیت ہوتی ہے نا۔ تو کم از کم ظاہری عمل کی مشابہت تو ہو گئی ہے کہ جیسے سورہ یوسف ہے تو ختم ہو کر کے نہیں دے رہی، ماشاء اللہ، لیکن آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے، الحمدللہ میں تو تنگ نہیں آیا لیکن آپ شاید تنگ آ گئے ہوں، پتہ نہیں کتنے سال سے تو زیادہ ہو گیا سورہ یوسف پڑھتے ہوئے، اچھی طرح یاد ہے کہ میں پچھلے سال جو ہے وہ سفر پہ جب ہم لوگ گئے تھے تو وہاں بھی سورہ یوسف ہی چل رہی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری سورہ طٰہٰ پڑھنے میں پتہ نہیں کتنے مہینے ہم نے لگا دیے تھے، اللہ تعالیٰ واقعی جس کا حق ادا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، اور جو ہم نے پڑھا اور سیکھا اور سمجھا تو اس کے اوپر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق ادا فرما لے، اور اپنی رحمت سے ان کو قبول بھی فرما لے۔ اونٹ انشاءاللہ پھر تیار ہے، سورہ یوسف ختم ہونے والی ہے، بہرحال اچھا ہماری اتنی کہاں، وین دا ٹائم پیریڈ واز اوور آف حضرت وین دا ٹائم پیریڈ واز اوور آف حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سورت توبہ، اچھا میں آپ کا سوال ویسے سمجھا نہیں، یا آپ جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھا نہیں ہوں، سورہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی قسم کی کوئی روایت ہے جو آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت توبہ، سورہ توبہ کے بارے میں؟ بہرحال نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے حقیقت واقعہ ظاہر ہونے کے بعد اپنے والد اور بھائی سے معافی مانگی، इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स के हाथ या जुबान से किसी शख्स को ईजा पहुंची या उसका कोई हक उसके जिम्मे रहा, उस पर लाजिम है कि फौरन इस हक को अदा कर दे या उससे मुआफ करवा ले। अच्छा, आप ये ही गेव इस कुर्ता टू द न्यूज रिपोर्टर। जी, न्यूज रिपोर्टर गालबन वो एक रिवायत से पता चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रहता है, असल में जो उन्होंने मैसेजेस किए थे ना, ये कहना चाह रहे थे कि हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु की जब तौबा कबूल हुई थी, 50 दिन गुजरने के बाद जब तौबा कबूल हुई थी और आयात नाजिल हुई थी उनके कबूलियत तौबा की, तो उनको जिन्होंने आकर के खबर दी थी ना कि आपकी तौबा कबूल हो गई है, कितनी बड़ी खुशखबरी थी, सारे मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि ये पक्के मोमिन थे और ईमान का रिश्ता जो था वो सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता था। ठीक है, तो इस ईमान के रिश्ते की वजह से दूसरे साथियों को इतनी फिक्र थी इनकी कि हमारे साथी को जो है ना, वो हमने यानी हमारे साथी के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम ने उनका सोशल बायकॉट किया हुआ है, तो जब खुशी की खबर आई, उनकी तौबा कबूलियत की खबर आई, तो सारे सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग एक दूसरे से जो है वो यानी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे कि किसी तरह मैं पहले जाकर के उनको खुशी की खबर सुना दूं। तो एक तो रिवायत में पढ़ा एक साहबी तो दौड़ पड़े उनकी तरफ और दूसरे साहबी ने कहा चलो मैं दौड़ में तुम्हें हरा नहीं सकता, वो पहाड़ पे चढ़ करके उन्होंने वहां से आवाज लगाई कि यानी अबशरी या काब, राइट, कि तुम्हें मुबारक हो या काब, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। आवाज तो पहले पहुंच जाती है ना, स्पीड ऑफ साउंड तो बहरहाल तेज होती है स्पीड ऑफ ए मैन से। बहरहाल तो जो भी थे इनमें से उनके ऊपर उनको उन्होंने अपना कुर्ता उतार करके हदिया कर दिया था, और हमने ये भी सुना कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला थे, हर चीज में आगे बढ़ने वाले। अबू बकर द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन अबू बकर, बकर उनकी कुनियत भी इसी वजह से अबू बकर कुनियत थी। तो मालूम हुआ कि जिस शख्स के हाथ या जुबान, अच्छा हजरत अगला पॉइंट है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादों ने हकीकत वाकया जाहिर होने के बाद अपने वालिद और भाई से माफी मांगी। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स के हाथ या जुबान से किसी शख्स को ईजा पहुंची या उसका कोई हक उसके जिम्मे रहा, उस पर लाजिम है कि फौरन उस हक को अदा कर दे या उसे माफ करवा ले। हक को अदा कर दे या माफ करवा दे, कैसे माफ करवा ले, माफ कर दे वरना मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे माफ नहीं करवाना, ऐसे ही माफ करवाना नहीं होता, बल्कि उससे इल्तिजा करके, उससे दरख्वास्त करके, उसके सामने जो है ना वो यानी रो धो करके उससे हक माफ करवा दे या अदा कर दे। सबसे बेहतर तो यह है कि अदा कर दे, खुसूसन जो है जो अगर किसी से कर्ज वगैरह लिया हुआ है और उसको वक्त गुजर चुका है, एक्सपेक्टेड टाइम यह था कि भाई अभी आप वापस कर देंगे, तो कर्ज जो है ना उसको अदा करने में तो सबसे ज्यादा जल्दी करनी चाहिए, और इसके अलावा दूसरे भी हकूक कभी यही मामला है। सही बुखारी में बरिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के जिम्मे किसी दूसरे का कोई हक माली वाजिब हो या उसको कोई ईजा हाथ या जुबान से पहुंचाई हो, उसको चाहिए कि आज उसको अदा कर दे या मुआफी मांगकर उससे सुबुकदोशी हासिल कर ले, कबल इसके कयामत का वो दिन आ जाए जहां किसी के पास कोई माली हक अदा करने, माल हक अदा करने के लिए ना होगा। कयामत के दिन तो किसी के पास माल नहीं होगा ना, वो तो खत्म हो गया, दूसरों की मिल्कियत बन गया। ठीक है, यानी जब इंसान की आंख बंद हुई तो उसकी ओनरशिप खत्म हो गई इस दुनिया से, सारी माल सारी प्रॉपर्टी की ओनरशिप खत्म हो गई, 1/3 में भी उसकी जो वसीयत बाकी है वो भी वसीयत एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये नहीं कि अभी भी उसका माल बाकी है दुनिया के अंदर, नहीं, वसीयत भी है तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो मिल जाएगी जिसको उसने वसीयत करी थी। कर्ज वगैरह हैं तो वो भी जो है वो अदा हो जाएंगे, इसका अपना कुछ नहीं बाकी बचेगा, इसका अपना कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। तो इसका अपना क्या बाकी बचेगा, इसके सिर्फ और सिर्फ आमाल बाकी बचेंगे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कैश वगैरह की शक्ल में होते ही नहीं। ठीक है, तो फिर कयामत के दिन ये किस माल से जो है वो अपने हुकूक अदा करेगा, दूसरों के हुकूक अदा करेगा। तो फरमाया कि कबल इसके कि कयामत का वो दिन आ जाए जहां किसी के पास कोई माल हक अदा करने के लिए ना होगा, इसलिए उसके आमाल सालेहा मजलूम को दे दिए जाएंगे, ये खाली रह जाएगा, यानी जिसके ऊपर इसने जुल्म किया होगा उसको इसके आमाल सालेहा दे दिए जाएंगे और ये खाली रह जाएगा, क्योंकि मजलूम भी जो है ना वो इतना आसानी से टलेगा नहीं, इतना आसानी से मानेगा नहीं, इसको छोड़ेगा नहीं। वो कहेगा मुझे सारे इसके अमाल सालेह चाहिए। और अगर उसके अमाल भी सालेह नहीं है, यानी अमाल सालेह थे ही नहीं या खत्म हो गए दे दे करके, खत्म हो गए अब, तो दूसरे के जो गुनाह हैं वो उसके सर पर डाल दिए जाएंगे। वल आयाज़ु बिल्लाह तआला। इतना ये खौफनाक, यानी खौफ दिलाने वाली ये बात है कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं आप। वल आयाज़ु बिल्लाह तआला, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें भी ऐसे ऐसे वक्त देखने से जो है वो महफूज फरमाए। दुनिया की जिंदगी में ही अल्लाह ताला सारे हुकूक जो है या तो अदा करवा दे या ये कि माफी दिलवा दे। इफ अ मैन, किसी ने लिखा है कि इफ अ मैन डजंट एक्सेप्ट द अपोलॉजी सो स्टिल द पर्सन विल डिजर्व द पनिशमेंट और नॉट। नहीं, ये भी रिसेंटली भी शायद बात आई थी क्लास के अंदर कि इफ अ मैन डज नॉट एक्सेप्ट द अपोलॉजी, तो एक्सेप्ट द अपोलॉजी जो है ना, ये माफी मांगने की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट भी करे। माफी मांगने की जिम्मेदार, माफी मांगने वाले की जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसे माफी मांगे कि जैसे कि माफी मांगना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे माफी मांगना कि जैसे कि अगले बंदे को जो है ना वो और अजियत दे रहे हैं आप माफी मांग करके। तो ऐसे तो माफी होती नहीं, ऐसे तो माफी मांगने का तरीका ही नहीं हो, ठीक है। अगर इसने सही तरीके से माफी मांग ली, यानी लजाजत के साथ अपने कसूर को एक्सेप्ट करते हुए माफी मांग ली, अब उसके बाद अगर वो बंदा माफ ना करे तो वो फिर उसका मसला है, इसका मसला नहीं। इसने अपना काम कर लिया, इसके कंधों से बोझ उतर गया, ठीक है। और जिसने माफ नहीं किया तो उसके बारे में तो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त बात फरमाई कि जिसका कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, कि अगर तुमसे कोई माफी मांगे और तुम उसको माफ माफ ना करो तो फिर हौज़े कौसर पर आके मुझसे मत मिलना, हौज़े कौसर पर आके मुझसे मत मिलना, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम गोया के जो हमारी स्लैंग में जिसको कहा जाता है ना, तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, राइट, जिनकी जिनकी शफात के हम मुतमन्नी हैं और उसी के ऊपर हमारा सारा का सारा इन्हिसार है और आसरा है, वो हमें अगर ये कह दें कि तुम्हारी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, तो फिर ईमान वाला तो फिर लरज जाता है ना इस बात को सुन करके, ठीक है। कोई माफी मांग रहा है और ये माफ ना करे और उसके ऊपर इतनी बड़ी वईद का मुस्तहिक बन जाए, इतनी बड़ी जो है वो नुकसान उठा ले, तो ये तो ईमान वाला ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकाम है सब्र और शुक्र। नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्त बात फरमाई क्यों, इतनी सख्त बात अपने उम्मती को कर कह रहे हैं ना, क्यों फरमाई? नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उनकी उम्मत के अंदर जो है ना ये नफरतें और कुरदूरतें ना रहे, राइट। लोग गलती हो जाती है इंसान से, वो गलती पे माफी मांग ले और अगला उम्मती माफ कर भी दे, राइट। ये नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है। इस यानी इस हदीस से, इस कौले नबी अलैहिस्सलाम से हमें यही पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है, चाहत है ये, ठीक है, कि कदूरतें खत्म करो, नफरतें खत्म करो अपने अपने दिल की, ठीक है। और ये बात जो है ये ईमान और दीन वगैरह के मसले की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पर्सनल जो झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं और जो है वो पास पड़ोस के झगड़े होते हैं, इन इन झगड़ों की बात हो रही है कि इसके अंदर माफी तलाफी करके काम को खत्म करो, राइट। क्या था वो बच्चों में जो मशहूर होता है कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, ठीक है, लड़ाई लड़ाई माफ करो, लड़ाई खत्म करो और झाड़ू लेकर के मस्जिद में चले जाओ, वहां पे झाड़ू देना शुरू कर दो। यही मतलब है इसका? नहीं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह का घर जो है ना तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिल अल्लाह का घर है, घर है। जब लड़ाई लड़ाई माफ कर दोगे, कीना खत्म हो जाएगा, तो ये कीना जो है ना वो दिल का मर्ज है, ये दिल की नजासत है, ये नजासत दिल से दूर हो जाएगी, अल्लाह का घर जो तुम अपने सीने में लिए फिरते हो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम सब्र व शुक्र। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिदैन के सामने कुछ अपनी सरगजश्त बयान करना शुरू की, यानी जो उनके सर पे गुजरी थी वो बयान करनी शुरू करी। यहाँ एक मिनट मिनट ठहर कर गौर कीजिए कि आज अगर किसी को इतने मसाइब का सामना करना पड़े जिसने यूसुफ जितने यूसुफ अलैहि सलाम पर गुजरे और वालिदैन से इतनी तवील मफारकत और मायूसी के बाद मिलने का इत्तेफाक हो, तो वो वालिदैन के सामने अपनी सरगजश्त क्या बयान करेगा, कितना रोएगा और रुलाएगा, और कितने दिन रात मसाइब की दास्तान सुनाने में सर्फ करेगा। मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ वो भी हुआ, और उसने मुझे ये ऐसे जो है वो तकलीफ दी, उसने मुझे यहाँ पर जो है वो मारा, उसने मुझे यहाँ पर जो है वो धुतकारा, राइट। कई कई दिन तक जो है वो 40 साल कम से कम तो ऐसे गुजरे थे ना, तो 40 साल की स्टोरी जो है वो 4 मिनट में तो मुकम्मल नहीं हो जाती आम आदमी की। मगर यहाँ तरफेन में अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं, उनका तर्ज अमल मुलाहिजा फरमाइए। याकूब अलैहिस्सलाम के बिछड़े हुए महबूब फर्जंद हजारों मसाइब के दौर से गुजरने के बाद जब वालिद से मिलते हैं तो क्या फरमाते हैं? वक़द अहसन बी इद अखरजनी मिन अस्सिज वजाअ बिकुम मिन अलबदवी मिन बादी अन नज़ग़ अश्शैतान बैनी वबैना इख्वती। यानी अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान फरमाया, वक़द अहसन बी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अल्लाह का जिक्र, सबसे पहले अल्लाह ताला को क्रेडिट दे रहे हैं, अल्लाह ने एहसान फरमाया। पीछे जो सब कुछ हुआ था वो अल्लाह की मर्जी के बगैर हो गया था, अल्लाह की मर्जी के बगैर भाइयों ने उनको जो है वो कुएं में फेंक दिया था, राइट। अल्लाह वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, अल्लाह वॉज नॉट इन्वॉल्व इन यूसुफ अलैहिस्सलाम बीइंग मेड ए स्लेव, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है स्लेव बने, राइट, गुलाम बने, अल्लाह की मर्जी के बगैर वो सारा काम हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात पता नहीं थी कि कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला की उन तमाम आजमाइशों का बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया, अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश में क्यों डाला, अल्लाह ताला ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इतने सालों के बाद जो इनके साथ बजाहिर एक जिसको कहते हैं इवेंटफुल मामला था कैद से निकालने वाला, सिर्फ उसका तस्करा फरमा। ठीक है, तो ये होते हैं अच्छे लोग, ये मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, ये जिससे मोहब्बत करते हैं ना उसकी बुराइयां छुप जाती हैं इनकी निगाहों से, उनकी उसकी बुराइयों का तस्करा ही नहीं करते। बुराइयां तो अल्लाह ताला की क्या बुराई हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश पहुंची, जो तकलीफ पहुंची, अल्लाह की मर्जी से पहुंची ना, उसका तस्करा ही नहीं करते, और सिर्फ जो अच्छी बात पहुंची है उसका तस्करा तस्करा फरमाते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, और सूरह आराफ की तफसीर के अंदर तो सुभान की यानी कि एक आयत के अंदर तो सुभान अल्लाह क्या अल्लाह ताला ने इसका नक्शा खींचा है कि जब ईमान वाले जन्नत में पहुंचेंगे ना, तो वो जन्नत में पहुंच करके अपने नेक अमलों का कोई तस्करा ही नहीं करेंगे कि हम अपने नेक अमलों की वजह से यहाँ पे पहुंच गए, वो सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत का तस्करा करेंगे कि अल्लाह की रहमत की वजह से हम जो है वो जन्नत में पहुंच गए, और उसी को रेसिप्रोकेट करते हुए, उसी का जवाब देते हुए अल्लाह ताला क्या जवाब देंगे कि नहीं, तुम अपने अमलों की वजह से जन्नत में पहुंचे हो। सूरह आराफ की आयत है, अल्लाह ताला क्या जवाब देंगे, तुम अपने अमलों की वजह से जन्नत में पहुंचो। इन्होंने जन्नत में पहुंचने का क्रेडिट अल्लाह को दे दिया, अल्लाह ने इनके जन्नत में पहुंचने का क्रेडिट इनको वापस लौटा दिया। ये हसीन ताल्लुक होता है, ये मोहब्बतों का रिश्ता होता है, उसके अंदर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बार बार इसकी हमें जो है ना वो याद दहानियां मिल रही होती हैं, बार बार हमें बताया जा रहा है ये चीज। क्यों बताया जा रहा है? किससे कहानियां सुनाने के लिए? नहीं, कि हम भी ऐसे बन जाएं, राइट। तो यानी अल्लाह ताला ने उन्होंने फरमाया कि मुझ पर एहसान फरमाया, बल्कि मुझे कैद खाने से, जबकि मुझे कैद खाने से निकाल दिया और आपको बाहर से यहां ले आया, वजाअ बिकुम मिनल बदवी। ठीक है, बाद इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डलवा दिया था। देखें, जहां अल्लाह का तस्करा है वहीं फौरन उसके बाद शैतान का भी तस्करा है। अल्लाह का तस्करा है दोस्त का, दोस्त का जहां पे तस्करा है वहीं पर दुश्मन का भी तस्करा है। ठीक है, तो सिर्फ दोस्त दोस्त जो है ना ये भी ठीक नहीं होता, और सिर्फ दुश्मन दुश्मन भी ठीक नहीं होता। दोस्त और दुश्मन ये दोनों साथ अल्लाह ताला ने निजाम बना दिया इस दुनिया के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर ये निजाम बना दिया है। ठीक है, दोस्त और दुश्मन साथ साथ चलते हैं। तो एक अकलमंद इंसान जो है ना दोस्त से गाफिल होता है कि दोस्त को जो है वो भूल जाए, दोस्त के एहसानात को भूल जाए, और ना वो दुश्मन से गाफिल होता है, ना वो दुश्मन से गाफिल होता है। कितनी जगह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो हमें हमारा दुश्मन भी याद दिला रहे होते हैं। ठीक है, तो शैतान के बड़े फायदे हैं, शैतान के बड़े फायदे हैं, ईमान वालों को तो बड़ा फायदा है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा क्या कि सारा जो मलबा है ना, मलबा वो उठा के शैतान पे डाल दो, है ना, अपना मलबा नहीं कि जो मैंने किया वो तो शैतान की वजह से किया तो मेरा क्या कसूर, अपना मलबा उठा के शैतान पे डाल दिया। ओ भाई, किया तो मैंने अपने नफ्स की वजह से किया ना, जो मैंने किया मैंने अपने नफ्स की वजह से किया, नहीं, मलबा किसका डालना है, दूसरों का मलबा शैतान पे डालना है। मेरे भाइयों ने जो गलत काम किया था मेरे साथ वो इसलिए किया था क्योंकि शैतान ने उनसे करवा दिया था, राइट। कितना फायदा हो गया, सारा जो है वो जो बर्डन था गुनाह का, तकलीफ अजियत पहुंचाने का, वो सारा का सारा बर्डन डाल दिया शैतान के ऊपर। अब जो है वो अपने भाइयों के साथ मोहब्बत का रास्ता खुल गया, कदूरत का रास्ता खत्म हो गया, शिकायतों का रास्ता खत्म हो गया। ये फायदा नहीं है शैतान का तो और क्या है, ये यही तो फायदा है शैतान का। और ये किसको मिलता है, ये ईमान वालों को ये फायदा मिलता है, काफिरों को फायदा नहीं मिलता, फासिकों को इसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि फासिक का एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या लिखा आपने, वकाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, यही वो सूरह आराफ की आयात थी। वकालू, वो लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम की तमाम तारीफें हैं उसके लिए, हदाना लिहादा, जिसने हिदायत दी हमें इसकी, यानी इस तरफ उसने हमें गाइड किया जन्नत की तरफ। वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना, और हम हरगिज हरगिज जो है वो इस तरफ हिदायत नहीं पा सकते थे कि जन्नत की तरफ, कि अगर हमें अल्लाह ताला इसकी तरफ हिदायत ना देता। अल्फाज के ऊपर जरा सा गौर करें, रोए बगैर इंसान रह नहीं सकता, रोए बगैर इंसान रह नहीं सकता। कितने अच्छे लोग होते हैं ये ईमान वाले, कितने हसीन लोग होते हैं, इनके दिल कितने प्यारे होते हैं, इनके दिल कितने खूबसूरत होते हैं, राइट। कितनी खूबसूरत बात फरमाई, कालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता ना, हम कभी भी जन्नत तक नहीं पहुंच सकते थे, राइट। लकद जात रुसुल रब्बिना बिल हक, नहीं लेकिन उसके बाद फिर, हाँ तो हाँ, लकद जात रुसुलु रब्बिना बिल हक, तहकीक है हमारे पास हमारे रब के रसूल रसूल जो हैं वो हक के साथ आए। व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु व नूदू, और निदा दी जाएगी, निदा देगा, निदा देने वाला, आवाज देने वाला, निदा देगा, आवाज देगा, अंतिलकुमुल जन्नतु, के ये जन्नत है, ये वो जन्नत है, उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलू, जो के जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो। किस वजह से वारिस बना दिए गए हो, बिमा कुंतुम तामलू, अपने अमलों की वजह से तुम वारिस बना दिए गए हो। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, तुम अपने अमलों की वजह से जन्नत में पहुंचे हो। और ये कह रहे होंगे नहीं, हम अल्लाह की वजह से जन्नत में पहुंचे, नहीं, जैसे बीवी शोहर का आपस में मोहब्बत का ताल्लुक होता है ना, तो बीवी शोहर की गुण गाती है, शोहर बीवी की गुण गाता है, राइट। माँ बाप का आपस में जब मोहब्बत का ताल्लुक होता है तो औलाद जो है माँ बाप की गुण गा रही होती है, माँ बाप औलाद के गुण गा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, माशाल्लाह, मा असाब मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, एवरी सिन गोज टुवर्ड्स शैतान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मसाइब तरतीब वार तीन बाबों में तकसीम हुई है। अव्वल, ये यानी तीन बाब, तीन जो है वो चैप्टर्स बनते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की ऊपर जो मुसीबतें आई उनके। अव्वल, भाइयों का जुल्म और जोर। दूसरे, वालिदैन से तवील जुदाई। तीसरे, कैद खाने की तकालीफ। ठीक है, कैद खाने की तकालीफ ये आखिरी बाब था, उसके बाद तो फिर महल में पहुंच गए थे, उसके बाद तकालीफ खत्म हो गई। उसके बाद खुदा ताला के इस बरगुजीदा पैगंबर ने अपने बयान में पहले तो वाकयात की तरतीब को बदल कर कैद खाने से बात शुरू की, यानी आखिरी वाली चीज से बात शुरू की, और उसमें कैद खाने में दाखिल होने और वहां की तकालीफ का नाम नहीं लिया, बल्कि कैद खाने से निकलने का जिक्र अल्लाह ताला के शुक्र के साथ बयान किया। ये भी बतला बता दिया कि मैं किसी वक्त कैद खाने में भी रहा हूँ, कैद खाने का तस्करा कर दिया, ठीक है, ताकि लोगों को इतना तो पता चले ना कि हाँ भी मुसीबत आई है मेरे ऊपर, ये ना समझे कि हाँ भाई ये तो माशाल्लाह बादशाह हैं, इन्होंने तो मुसीबत देखी ही नहीं। ऐसा भी तो होता है ना कि आप किसी को नसीहत करने के लिए जाएं तो कि वो मुश्किल में है और उसको कहें कि भाई आप अल्लाह ताला से माफी मांगे अपनी गलतियों की वजह से आपके ऊपर ये मुसीबत आ गई है, आप माफी मांगे, अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे, और हो जाता है, ठीक है ना, गलती हो जाती है वगैरह वगैरह। तो आगे से वो बंदा कहता है तुम्हें क्या पता मैं किस मुसीबत में हूं, तुमने कभी मुसीबत देखी हो तो तुम मेरी मुसीबत का एहसास कर सकोगे, राइट, मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, मैं तो ऐसे हूं, और तुम क्या जानो मुसीबत का मजा, तुम्हें क्या पता मुसीबत क्या चीज होती है, जब भी तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, बातें बनाना बड़ा आसान होता है, कहते हैं ना हम एक दूसरे को, बातें बड़ा बनाना बड़ा आसान होता है, नसीहत की बातें करना बड़ा आसान होता है, कभी खुद मुसीबत में आकर के देखो, वरना चुप करके बैठे रहो, खबरदार जो मुझे नसीहत करी हो, तो अगले बंदे को बताना ही पड़ता है भाई हमने भी मुसीबतें देखी हैं, हम भी जो है ना वो मुश्किल कठिन दौर से गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली जो है वो लफाजी करना जानते हैं और हमें कुछ भी नहीं पता, ऐसा नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ये बता रहे हैं ये जतलाने बतलाने के लिए नहीं बता रहे, बल्कि कि भाई यानी लोगों को भी एहसास हो कि हाँ मेरे ऊपर भी ऐसी चीजें आई हैं, मैं यानी क्या कहते हैं उसको कॉन्कॉक्टेड मुसीबत के ऊपर शुक्र नहीं कर रहा अल्लाह ताला का, ठीक है ना, यानी यानी ऐसे ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत ही नहीं, तो ये कौन सी बड़ी बात है अल्लाह भाई, जिसको जिसको हर वक्त, जैसे ये अय्यूब अलैहि सलाम, भाई अय्यूब अलैहि सलाम के पास नेमतें ही नेमतें थी, नेमतें ही नेमतें थी, ठीक है ना। तो एक दिन जो है ना वो शैतान अल्लाह ताला से कहने लगा कि अल्लाह आपकी, अच्छा वो बड़ा शुक्र करते थे अल्लाह ताला का, तो शैतान ने क्या बात करी, शैतान इस तरह की बातें करते हैं ना, शैतान ने अल्लाह ताला से कहा अल्लाह आपका ये बंदा हर वक्त आपका शुक्र करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, इसने तो कभी मुसीबत देखी ही नहीं, आपने इसको इतनी नेमतें दी हुई, इतनी नेमतें दी हुई हैं, तो क्या तो शुक्र करेगा नहीं तो और क्या करेगा, ये कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो शैतान ने ऐसी बात करी ना, उसी तरह से हम भी ऐसी बातें करते हैं शैतान वाली, कोई कोई नसीहत कर देगा तुम्हें क्या पता मुसीबत क्या होती है, ठीक है। तो अगले बंदे को इस नीयत के साथ बता देना अपनी मुसीबत का, ये खैरख्वाही के लिए और अच्छी नीयत के साथ क्या बताना होगा। यूसुफ अलैहि सलाम ने जेल खाने से निकलने का तذکرہ किया, भाइयों सॉरी बल्कि कैद खाने से निकलने का जिक्र अल्लाह ताला के शुक्र के साथ बयान किया, कैद खाने से निजात और उस पर शुक्र इलाही के जमन में ये भी बतला दिया कि मैं किसी वक्त कैद खाने में भी रहा हूं, तो ये बतलाना भी एक जरूरत थी, ठीक है। यहाँ ये बात भी काबिल नजर है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद जेल खाने से निकलने का जिक्र किया, भाइयों ने जिस कुएं में डाला था उसका इस हैसियत से भी जिक्र नहीं किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कुएं से निकाला, यानी ये तक नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझे कुएं से निकाला, जेल से निकालने का तो अल्लाह ताला ने निकाला, ठीक है ना, अजीब। यानी आप इंटेलिजेंस देखें, आप दूरंदेशी देखें, आप जो है वो यानी उसको कहते हैं ना तोल तोल करके बोलना, मेरे कौन से वाले अल्फाज का जो है ना वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है सुनने वाले के ऊपर, राइट। फैक्ट्स थे बयान कर देते, सारे फैक्ट्स बयान कर देते, झूठे तो नहीं होते, राइट, लेकिन कौन सा फैक्ट बयान करने का है, कौन सा फैक्ट नहीं बयान करने का है, जब भी बार बार समझाते हैं अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाते हैं, हमसे भी बड़ी गलतियां होती हैं, ठीक है, बार बार, लेकिन हमारा काम है समझाना, अल्लाह उसी की बरकत से शायद हमें भी तौफीक अता फरमा दे, क्या कि जब सच बोलने की बात आती है कि सच बोलना सच बोलना सच बोलना, तो क्या बात समझाते हैं, सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो फैक्ट हो वो बयान कर दो, है ना, जो फैक्ट हो वो बयान कर दो, नहीं, सच बोलने का मतलब ये है झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, ठीक है। तो सच बोलो लेकिन पहले तोलो फिर सच बोलो कि इस सच को बोलने में फायदा है या इस सच को बोलने में नुकसान है, ठीक है, पहले तोलो फिर सच बोलो कि बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलने का मामला क्या है, तोलने छोलने में तोलो, झूठ बोलने का फायदा है तो बोल दो, नहीं बोलने का फायदा है तो ना बोलो, ये है, झूठ के साथ ये वाला उसूल चलेगा, नहीं, झूठ के साथ ये उसूल नहीं चलता कि पहले तोलो फिर झूठ बोलो, नहीं, झूठ के साथ ये है कि तोलने वोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस नहीं बोलना, बोलना ही नहीं, झूठ तो बोलना ही नहीं, चाहे किस्से कहानी की शक्ल में हो, चाहे जो है वो अपने ख्वाब बयान करने की शक्ल में हो, चाहे जो है कोई और उल्टी सीधी किसी के बारे में कोई बात बयान करने की शक्ल में, किसी शक्ल का भी झूठ बोलना ही नहीं है। तो सच बोलने का मतलब क्या है कि पहले तोलो फिर सच बोलो, और अगर तोलने में पता चले कि नुकसान होगा तो फिर मत बोलो, खामोश। ठीक है, माशाल्लाह बच्चे जो है ना उनसे टिका नहीं जाता, बार बार टाइप टाइप भी करते रहते हैं और फिर डिलीट भी करते रहते हैं, टाइप भी करते रहते हैं डिलीट। अब मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, इसका भी तो थोड़ा ख्याल रखो भाई। बहरहाल इन्होंने लिखा, अभी तक तो डिलीट नहीं किया तो मैं पढ़ लेता हूँ कि सिंस इफ यू फॉरगिव समवन सिंस सो इट इज नॉट गुड टू रिपीट देयर सिंस, रिमेन साइलेंट इफ यू कैन से द ट्रूथ। जी ठीक है चले, तो फरमाते हैं कि यहाँ ये बात भी काबिल नजर है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल खाने से निकलने का जिक्र किया, भाइयों ने जिस कुएं में डाला था, इस हैसियत से भी जिक्र नहीं किया कि अल्लाह ताला ने मुझे उस कुएं से निकाला। वजह यह है कि भाइयों की खता पहले माफ कर चुके थे और फरमा चुके थे ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, तसरीब का मतलब मत, यानी आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है, इसलिए मुनासिब ना समझा कि अब इस कुएं का किसी तरह से भी जिक्र आए ताकि भाई शर्मिंदा ना, भाइयों को शर्मिंदगी होगी अगर कुएं का जिक्र भी आएगा तो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सही मानों में माफ कर देना। इसके बाद वालिदैन की तवील और सब्र आजमा वो फारिकत और उसके तासुरात का जिक्र करना था, तो इन सब बातों को छोड़कर उसके आखिरी अंजाम और वालिदैन से मुलाकात का जिक्र अल्लाह ताला के शुक्र के साथ किया कि आपको बद यानी देहात से शहर मिस्र में पहुंचा दिया। इसमें इस नेमत की तरफ भी इशारा है कि यूसुफ के याकूब अलैहिस्सलाम का वतन देहात में था, कनान जो था वो असल में देहात था जहां मईशत की आसानियां कम होती हैं, अल्लाह ताला ने शहर में शाही एजाजात के साथ अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, यानी अर्बन माइग्रेशन इज नॉट एसेंशियली रॉन्ग, राइट, यानी गांव देहात को छोड़ करके शहर में मुंतकिल हो जाना ये कोई गुनाह का काम लाजमन नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह हमारे यहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर ही होता है कि लोग जो है वो रूरल एरिया से जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर माइग्रेट करते हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम के इस अमल से और इसके ऊपर जो है वो अल्लाह की नेमत इसको करार देना, तो इसको जो है वो अच्छे अंदाज में बयान किया जा रहा है। तो अब उसमें फिर बाकी चीजें अगर ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आप किसी की अजियत का सबब बन रहे हैं या दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स का सबब बन रहे हैं, तो फिर बात समझ बात ठीक है कि भाई आपको नहीं मूव होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर शहर में गांव छोड़कर के मूव हो जाना ये कोई बुरी बात नहीं है। एनीवेज, अब पहली बात रह गई भाइयों का जुल्म जो, सो उसको भी शैतान के हवाले करके इस तरह बयान कर दिया, इस तरह बेबाक कर दिया, यानी इस तरह उसको ना खत्म ही कर दिया कि मेरे भाई तो ऐसे ना थे जो ये काम करते, शैतान ने उनको धोखे में डालकर ये फसाद करा दिया। ठीक है, तो शैतान को मुलजिम बल्कि मुजरिम करार दे दिया, भाइयों के ऊपर से ये इल्जाम जो है वो खत्म कर दिया और गुस्सा पाक हो गया। ठीक है, ये है शान नबूवत के मसाइब और तकालीफ पर सिर्फ सबर ही नहीं बल्कि हर जगह शुक्र का पहलू निकाल लेते हैं, इसलिए उनका कोई हाल ऐसा नहीं होता जिसमें वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार ना हो, बखिलाफ आम इंसानों के कि उनका ये हाल होता है कि अल्लाह ताला की हजारों नेमतें बरसती रहीं तो भी किसी का जिक्र ना करें और किसी वक्त कोई मुसीबत पड़ जाए तो उसको उम्र भर गाते रहें। कुरान में इसी की शिकायत की गई, यानी अल्लाह ताला ना अपने बंदों की शिकायत करते हैं कुरान मजीद के अंदर, इन्नल इंसाना लिरब्बिही ही लकनूत, यानी इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। कनूत किसको कहते हैं, कनूत उसी को कहते हैं जिसके ऊपर अच्छाइयां बेशुमार हो लेकिन वो अच्छाइयों को देखने और अच्छाइयों का तذکرہ करने के बजाय जो एक बुरी चीज है ना उसके ऊपर किसी की तरफ से आई भी तो वो उस बुरी चीज का जिक्र, ठीक है, यानी अपने पर्सनल मामलात के अंदर उसको जो है ना वो सिर्फ पहुंचने वाली जो है वो बुराई तो समझ में आए याद आए लेकिन जो है ना वो अच्छाई उसको याद आए, इसको इस ऐसे शख्स को जो है वो कनूत कहा जाता है। और इंसान कितना बुरा है, घोड़ों से भी, घोड़ों का जिक्र किया ना, वल आदियात वबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा, राइट, कि घोड़ा ऐसा वफादार जानवर है कि मैदान जंग के अंदर उसके ऊपर मालिक की वजह से तीर भी बरस रहे होते हैं, नेजे भी पड़े होते हैं, उसको प्यास भी लग रही होती है लेकिन वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। मालिक उसको जिधर मोड़ना चाहता है उधर मोड़ता है, जिधर भगाना चाहता है उधर भगाता है। वो अपने पीठ पर से बड़ी आसानी से मालिक को फेंक दे उठा करके। क्या क्या जानवर ऐसा नहीं कर सकता, है ना? बहुत आसानी से, इतना ताकतवर होता है घोड़ा और इंसान इतना कमजोर होता है, उठा के फेंकी उसको, लात मारे उसको, बल्कि उसको अपने पैरों के नीचे कुचले और भाग जाए आराम से अपनी जान बचाने के लिए। कर सकता है आसानी के साथ घोड़ा, लेकिन वो नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घोड़े की कस्में खा ली और फिर इंसान का तज़किरा किया, इन्नल इंसान लरब्बिही लखनऊ। ठीक है, तो अच्छाइयों को छोड़ करके, है ना, वो किसी की बुराइयों का तज़किरा करना किसी भी के साथ, जैसे हम अपने मशायख के साथ, राइट, हमारे मशाए की इतनी सारी अच्छाइयां हमें मिली, और अगर कोई उनकी तरफ से कोई हमें ऐसी चीज, चाहे वो हकीकत में कोई गलत बात थी या जो है वो हमारे गुमान में गलत बात थी, हम उसको लेकर के बैठ जाएं और उनके साथ जो है अपना ताल्लुक तोड़ दें, और उनके साथ जो है अपनी निस्बत को खत्म कर दें, और उनकी बुराइयां जो है वो दूसरों के सामने बयान करना शुरू कर दें, राइट? हालांकि इतनी अच्छाइयां मिली, दीन की समझ हमें उनसे हासिल हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगना हमने उनसे सीखा, हमने यानी क्या हमारी गटर की रूहानी गटर की नाली में पड़े हुए भी हमारी हैसियत नहीं थी उतनी भी, बल्कि उससे भी गई गुजरी हैसियत थी, और हम इतना कुछ बन गए उनके सिखाने की वजह से। अब जो है ना वो कोई चीज जो है वो हमें तकलीफ की पहुंची, जरा हम उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं कराई, जरा उन्होंने जो है ना वो हमारे हमारी इज्जत अफजाई नहीं करी, या उन्होंने जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं किया, या जो भी इस किस्म का कोई मसला हुआ, अब जो है वो बजाय इसके कि उनके पास जाकर के हम बात को क्लियर कर लें, हाँ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, अपने बड़ों से ऐसी चीजें हो सकती हैं, उनके पास जाओ ना भाई, उनसे बात करो ना भाई, नहीं उनके पास नहीं जाना, दूसरों के पास जाना है और शिकायतें करनी है, और दूसरों के पास जाकर के जो है ना उनकी बुराइयां बयान करनी है, और फिर जो है वो ताल्लुक ही तोड़ देना है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत, बल्कि रब के साथ, अच्छा रब से ज्यादा और किसका हक है हमारे ऊपर? मशायख तो फिर जो है वो इंसान होते हैं, उनका एहसान तो फिर हमारे ऊपर कम होता है, हम तो अपने परवरदिगार को नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ऐसी ये जो 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 सिफात है ना, ये सिफात जो है ना वो हमें खत्म करने की जरूरत है, हम इसको समझने की जरूरत है कि कितना बुरा मामला होता है। एक दफा इस आजिज ने अपने हजरत के साथ मस्जिद नबवी के अंदर दरमियान में बैठ करके, बिल्कुल जहां पे ऊपर छतरियां होती है ना बिल्कुल अंदर, वहां पे ऐसा ऐसी बात करी इस आजिज ने कि हजरत हमें तो अल्लाह ताला के दर आपकी वजह से ही मिला है, आपने हमें सिखाया, आपने ही हमें बताया। हजरत का दिल बहुत दुखा हुआ था किसी की तरफ से, बहुत दुखा हुआ था। हजरत ने उसी वक्त जवाब दिया, हाँ अगर वो भी यही सोच लेता तो ये सब कुछ ना होता, अगर वो भी यही सोच लेता तो ये सब कुछ ना होता। हम क्यों दुखाते हैं इस तरीके से, है ना? शुरू में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी शैतान ही का जिक्र किया था कि ख्वाब के बारे में, वो भाइयों के दिल में नफरत पैदा है, हाँ भाई तो ये अल्लाह वाले यही ऐसी, ये अल्लाह वाले तो यानी अल्लाह की मिलिट्री वाले होते हैं ना, ये हिजबुल्ला असल वाकई जो हिजबुल्ला है असल में अल्लाह ताला की दीन का काम करने वाले, अल्लाह ताला की दीन का मदद करने वाले, ठीक है ना? तो ये तो मिलिट्री पर्सनल होते हैं, ये तो यानी SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप होते हैं, राइट, अल्लाह ताला के। तो ये दुश्मन को कैसे भूल सकते हैं? जब ये मिलिट्री वाला दुश्मन को भूला है तो फिर वो क्या फायदा क्या तुम्हारे मिलिट्री में होने का, राइट? फिर तो वो सल्तनत मुगलिया के आखिरी दौर की मिलिट्री के जो अहवाल बन चुके थे, फिर वही हो जाएगी फिर मिलिट्री तुम्हारी, अगर तुम शायद अगर तुम दुश्मन को भूल जाओगे तो। अल्लाह वाले कभी भी दुश्मन को नहीं भूलते, वो ना अल्लाह को भूलते हैं और ना अपने दुश्मन को भूलते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दास्तान मसाइब को 3 लफ्जों में मुख्तसर करने के बाद फरमाया, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशाउ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यानी मेरा परवरदिगार जो चाहता है उसकी तदबीर लतीफ कर देता है, यानी आसान कर देता है, लतीफ का मतलब आसान करने वाला, ठीक है, वो उसको तदबीर को आसान कर देता है, बिला शुबा वो बड़ा इल्म वाला हिकमत वाला है, यानी सारा इल्म तो अल्लाह के पास है, सारी हिकमत अल्लाह के पास है, ठीक है ना? और हम अल्लाह के दर को छोड़ करके जो है ना वो इंसानों के पास जाते हैं, हमारा मसला हल कर दो, राइट? अल्लाह वालों के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि उनसे हम मसले का हल मांग रहे होते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमाया होता है, बसीरत अता फरमाई, इस वजह से उनके पास जा रहे होते हैं। लेकिन जो गैर अल्लाह के मानने वाले होते हैं, जो दुनिया वाले होते हैं, उन्होंने हमारा कौन सा मसला हल करना है?
अल्लाह वालों के पास भी जो हम जाते हैं ना अपने सवाल करने के लिए, वो भी इसीलिए जाते हैं और इसीलिए हमें जाना है कि वो हमें अल्लाह के दर से जोड़ें, कि वो हमें अल्लाह के दर से जोड़ें। इसी वजह से सबसे पहले जो वो हमें मसले का हल बताते हैं, दुआ करो। और हमारा मिजाज क्या बना हुआ होता है, नहीं ये तो मुझे पहले से पता था, आप मुझे कोई नई बात बताएं, आप मुझे कोई वजीफा बताएं, आप मुझे कोई टोटका बताएं, ये दुआ से बड़ा वजीफा और दुआ से बड़ा टोटका कोई हो सकता है? दुआ किससे मांगते हैं भाई, राइट? किसी मुर्दा से मांगते हैं, किसी जो है वो जानवर से मांगते हैं दुआ, किसी हाथी से मांगते हैं, घोड़े से मांगते हैं दुआ, राइट? कि ये तो कोई बात नहीं हो कि आपने भी मुझे दुआ बनो, अल्लाह के बंदे दुआ अल्लाह से मांगते हैं। और कौन है अल अलीम अल हकीम, कौन है जिसके पास इल्म है तुम्हारी मुसीबत का, जिसके पास इल्म है तुम्हारी मुसीबत के हल का? तो अल्लाह से जोड़ने का मतलब क्या है, अल्लाह से दुआ करना सिखाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करना याद दिलाते हैं, ठीक है? तो मसले तो भाई अल्लाह ने हल करने हैं, मसले तो पीर साहब ने भी हल नहीं करने हैं, मसले शेख साहब ने भी हल नहीं करने हैं, मसले शेखुल इस्लाम साहब ने भी हल नहीं करने, किसी ने ही हल करना है, अल्लाह ने करना है। हमने जो है ना वो शेखों को अपना छोटा खुदा बना लिया, अब शेखों को हम उल्लू भी बनाते हैं ना, तो ये सोच के बनाते हैं, उनको क्या पता, उनको मेरे उन चक्कर जो मैं चला रहा हूँ पीछे पीछे, तो शेख साहब को तो चक्करों का पता नहीं, तो इस वजह से ना हम सारा काम शेख के साथ ही करते हैं, शेख ही को मक्खन भी लगा रहे हैं, शेख को जो है वो बटरिंग भी कर रहे हैं, शेख को जो है वो आधी बात भी बता रहे हैं, शेख को अपनी जो हरकतें की हुई हैं वो कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना? तो हम समझते हैं हमने बड़ा तीर मार लिया, हमने बड़ा कमाल कर लिया हमने, ठीक है ना? तो इस वजह से ना हमारा मामला शेख पे जाके खत्म हो जाता है, ये वो लोग हैं जो कि शेख को कुछ समझते हैं, उनका भी मामला शेख पे जाके खत्म हो जाता है, अल्लाह तक पहुंचता ही नहीं है। अल्लाह से दुआ करना, जैसे कि दुआ करने का हक है, अगर कोई शख्स अल्लाह से दुआ करे ना अपने मसलों के लिए, फिर उसके अंदर से निफाक खत्म हुए बगैर रह नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता उसके अंदर से निफाक खत्म हो जाए, निफाक खत्म ना हो जाए। लेकिन चूंकि हम अल्लाह तक नहीं पहुंचते हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं तो किसी नेक इंसान तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी पहुंच जो है ना वो शेख साहब तक है, पीर साहब तक है, इसी वजह से हमारे अंदर का निफाक खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म होता, क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पीर साहब को मेरे दिल का पता ही नहीं है कुछ, पीर साहब को मेरे जिंदगी के जो जो मैंने क्लोजेट्स अपने क्लोजेट के अंदर जो स्केलेटन्स छुपाए हुए हैं ना, पीर साहब को क्या पता है मेरे स्केलेटन्स का, ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है, यानी जो हमने अपनी कारिस्तानियां छुपाई हुई होती है ना, पीर साहब को क्या पता कारिस्तानियों का हमारी, इसी वजह से हमारे दिल का निफाक खत्म नहीं होता। अल्लाह से दुआ मांगे ना, अल्लाह ताला के सामने अपनी गलतियों का इकरार करें, अल्लाह ताला के सामने रोए धोएं, तो फिर तो सारा निफाक जो है ना वो पिघल करके बाहर निकल जाएगा हमारे अंदर से, लेकिन हमने ये करना ही नहीं है, इसी वजह से हम अल्लाह से मांगते ही नहीं, अल्लाह ताला से दुआ ही नहीं मांगते, मांगते भी हैं तो ऐसे मांगते हैं कि जिसके ऊपर जो है ना वो थप्पड़ मारने का दिल चाहे, ऐसी दुआ होती है कि आगे से थप्पड़ लगे हमें, राइट? ऐसी दुआ करने से बेहतर है कि भाई अब दुआ करना सीख लें पहले, फिर उसके बाद दुआ करना तरह से। खैर, अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।